ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले एक राजा को किसी ने दो पक्षी दिए और वो दोनों ही पक्षी बहुत सुंदर थे। तो राजा ने सोचा क्यों ना इन पक्षियों को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें उड़ने में और बहुत से कार्यों में पारंगत बनाया जाए। तो पक्षी विशेषज्ञों को वो दो पक्षी दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए। एक मास के बाद पक्षी विशेषज्ञ आता है और कहता है कि दोनों में से एक पक्षी जो है वो बहुत सुंदर उड़ता है, बहुत कलाबाजी दिखाता है और राजा को वो दिखाता भी है कि देखो कैसे उड़ रहा है वो पक्षी। पर जो दूसरा पक्षी है वो अपनी ही डाली पर बैठा रहता है। शायद इसे कोई रोग है, कोई बीमारी है, पता नहीं अंदर से क्यों कौन सी उदासी है कि ये पक्षी तो उड़ता ही नहीं है। सब कुछ कर लिया पर ये पक्षी नहीं उड़ता। तो राजा ने अपनी सभा में ये घोषणा की कि देखो क्या कोई इस पक्षी को उड़ा सकता है। तो सारे सभासद मंत्रीगण भी प्रयत्न करते हैं परंतु कोई भी उस पक्षी को उड़ाने में सफल नहीं होता है। वो पक्षी अपनी डाली पर बैठा रहता है। तो राजा बहुत निराश हो जाता है, क्या किया जाए। और अचानक राजा को एक विचार आता है क्यों ना किसी देहात के किसी व्यक्ति को बुलाया जाए, किसी किसान को या कोई व्यक्ति जो कि गांव में रहता है और जिनको और जिसको पक्षियों के विषय में बहुत जानकारी है। तो ऐसे एक किसान को बुलाया जाता है। वो किसान जाता है उस पक्षी के पास और वापस आ जाता है और राजा को दिखाता है देखो वो पक्षी उड़ रहा है। तो राजा को आश्चर्य होता है इसने ऐसा क्या कर दिया और इतने कम समय में कि पक्षी आकाश में उड़ने लगा है, उड़ान भर रहा है। ये तो आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो उस किसान को पूछता है राजा तुमने क्या किया। किसान कहता है कुछ नहीं, मैंने डाली को काट दिया और पक्षी उड़ने लगा। उसी डाली को वो क्या पकड़ा हुआ था, जैसे ही वो कटी अपने को बचाने के लिए उड़ने लगा, उड़ान के लिए डालियों को काटना आवश्यक है। और सबसे आकर्षित करने वाली डाली कौन सी है? कल की अव्यक्तवाणी टीचर से मुलाकात कौन सी है? देह भान की डाली। जब इस डाली को काटेंगे तभी वो पक्षी उड़ेगा। जब तक इस डाली को वो पक्षी पकड़ा हुआ है जोर से, क्या कहता है जोर जोर से, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। अव्यक्तवाणी थी ना एक, छोड़ो तो छूटे। तीन प्रकार के पक्षी इधर बैठे थे झाड़ पर, कौन से वो तीन प्रकार के थे? पहला वो तीन अलग, ये तीन अलग, छह पक्षी थे वैसे तो। एक झाड़ इधर, एक ब्रह्मा बाप उधर, इधर तीन और उधर तीन, इधर वाले कौन से थे? एक तो छुड़ाओ 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 करने वाले और पकड़ के है जोर से, दूसरे भोले पक्षी जिनको पता ही नहीं कि उड़ना भी है, और तीसरे तीसरे कौन से थे? कमजोर, जिनमें शक्ति नहीं थी उड़ने की। इधर तीन बताए थे और उधर तीन, एक तो थे जो कि कंधों पर बैठने वाले, एक तो थे हाथ पर बैठने वाले, और दूसरे गोल गोल घूमने वाले, ऐसे तीन इधर तीन उधर। तो कल की वाणी में जो दूसरा भाग है उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, टीचर्स से मुलाकात, विदेश की टीचर्स, विदेश के भाई बहने। तो क्या कहा उसमें बाबा ने? सबसे पहले टीचर्स से क्या प्रश्न पूछा? अपने आप को क्या समझते हो, सेवाधारी या बेहद के सेवाधारी? हद वाले सेवाधारी नहीं। एक प्रश्न पूछा टीचर से, कौन सा? किस बात के लिए तैयार हो? अगर जगह बदली हो जाए तो तैयार हो? बहुत बड़ा प्रश्न है। हर एक व्यक्ति जहां रहता है, सेंटर, मधुबन, घर, या फिर कोई अपार्टमेंट, कोई ऑफिस, कोई विशिष्ट स्थान, उस स्थान से उसका लगाव हो जाता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है वो। तो बाबा ने पूछा, हद के हो या बेहद के हो, किस स्मृति में रहते हो? यदि अभी कहा जाए कि जगह बदली कर दो तो तैयार हो? एक बार किया भी था बाबा ने ऐसा, हलचल हो गई थी, बहनों को इधर उधर कर दिया था पूरा। तो ये भी एक सूक्ष्म अभ्यास है कि हमारा स्थान में भी लगाव ना हो, किसी कमरे में भी लगाव ना हो, आज यहां कल वहां कल वहां। जैसे विदेश से आए हुए एक विदेशी को, फॉरेनर को, भारत का एक योगी पूछता है, तुम्हारा सामान कहाँ है? वो बोलता है, सामान सामान थोड़ी लाया हूं मैं, तो विदेश की विदेशी हूं, मैं सामान नहीं रखता हूं, स्वतंत्र हूं। वो योगी उसको अपने कुटिया में ले जाता है, वो कुटिया खाली पड़ी रहती है, कुछ सामान ही नहीं उसमें। तो वो फॉरेनर पूछता है कि आपका सामान कहाँ है? वो कहता है, मैं भी विदेशी हूं, जैसे तुम आए हो वैसे मैं भी आया हूं ऊपर से। ये संसार गेस्ट हाउस है। पहला भाग जो मुरली का है, आज सुबह पांडव भवन में चर्चा हुई, किस पर है? अवतार। अवतार अर्थात आया हूं, अवतार अर्थात जाना है, अवतार अर्थात कोई कर्म बंधन नहीं, अवतार अर्थात परमात्मा संदेश देने वाला, अवतार अर्थात अव्यक्त पाठधारी, अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्वरूप वाला, अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, अवतार अर्थात श्रेष्ठ कर्म, अवतार अर्थात कोई भी व्यर्थ का खाता बनाने वाले नहीं, अवतार अर्थात अव्यवी आए और अव्यवी उपराम, उपराम और अपरंपार प्राप्ति, ये अवतार की परिभाषा है। तो सबसे पहली बात जो टीचर के लिए कही, टोटल सात बातें हैं, सात बातों में से तीन और चार बातें की चर्चा आज करेंगे, तीसरा पार्ट कल। लंबी मुरली है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, टीचर अर्थात बेहद के सेवाधारी, टीचर अर्थात हद में नहीं फंसने वाले, टीचर अर्थात यदि स्थान चेंज करने को, बदलने को कहा जाए तो सहज बदल दे, किसी स्थान से भी लगाव नहीं। सन्यासी के लिए कहा जाता है कि वो 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं टिकता है, रहना चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि 3 दिन में व्यक्ति को स्थान से लगा होता है और 21 दिन में पूरा सेट हो जाता है एक स्थान पर, फिर तो छोड़ना ही नहीं चाहता, कब्जा कर लेता है फिर, अपना अपनी जड़ें मजबूत करता है फिर। तो आज यहां कल वहां, तो कल वहां, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। जहां वो रख दे वहां पर खुशी, होई सोई जो राम रच राखा, जो उसने रच के रखा है वो हो। Thy will shall be done, तेरी जो इच्छा, ऐसी जो चित्त की दशा है, उसको बाबा कहते हैं ये है टीचर, ये है शिक्षिका, अनअटैच्ड। तो ये एक बात। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, उड़ता पंछी हो या कोई डाली को पकड़ के हो, और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली कौन सी डाली है? देह भान की डाली। उसके कौन से रूप बताएं? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा आदत, मेरी रहन सहन, रहनी करनी, जो भी कहो, ये सब देहभान के प्रकार है। तो बाबा ने कहा ये जो पुराने संस्कार है और ये जो पुरानी आदत है, ये भी क्या है? कर्म भोग है। कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत हो जाना नहीं, पर कर्म के बंधन में नहीं फंसना, यही परिभाषा अवतार की भी थी। अवतार अर्थात किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। अभी अभी आया, कर्म किया और डिटैच्ड, उसका कोई वर्णन नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, कर दिया, फुल स्टॉप, आगे बढ़ गए। पुण्य करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उसकी गिनती, उसका अकाउंट हमें रखने की जरूरत नहीं। अगर हाँ, अच्छा कर्म किया, ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है, ये परमात्मा बैंक है। यहां किसी की स्तुति, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है कि वो कहे और वो हमको प्रमाणित करे कि तुमने अच्छा काम किया है। अगर वो अच्छा होगा काम, तो स्वतः ही ये सब पीछे पीछे आएगा, हमें भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो टीचर अर्थात किसी भी देहभान की डाली पर अटकने वाली नहीं, फंसने वाली नहीं। अब प्रश्न है, देहभान के रूप कौन कौन से है? देहभान के सूक्ष्म रूप कौन से है? आज भोजन मजा आ गया, और देहभान के रूप बहुत सारे, कम से कम 25 तो बताओ। मूड ऑफ, रूठना, रूसना, डिस्टर्ब होना, इरिटेबल होना, फीलिंग आना, छुई मुई, टच मी नॉट, मुझे कुछ करना, कहना मत, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मुझे थकान हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, सुबह से खाना नहीं खाया, ज्यादा भूख लगी है। भूख किसको लगी, आत्मा को या शरीर को? तो क्या कहना भी नहीं कि भूख लगी है? और देहभान के रूप अपमान और अभिमान, और देहभान के रूप प्रशंसा, और देहभान के सूक्ष्म रूप कौन से हैं? एक है देहभान, एक है देह अभिमान, एक है देह अहंकार। तीनों में क्या अंतर है? देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार। अभिमान मतलब मेरी बात मानो, और देह अहंकार अर्थ बाद में मानो, मेरी ही मानो। एक है देह भान, एक है देह अभिमान, एक है देह अहंकार। देह अहंकार जो है वो प्राप्तियों के लिए, संसारिक प्राप्तियां, मेरे पास धन अधिक है, मेरे पास ये ज्यादा है। हमारे बहुत पहले हम जहां काम करते थे, एक डॉक्टर थे, तो वो पहले पेशेंट को अपनी डिग्रियां सुनाते थे, उसके बाद ही उससे बात करते थे, और बात करते समय अपना पैर उसके बेड के ऊपर रखते थे और फिर बात करते थे। पहले अपना बताते थे मैं कौन हूं, और फिर अब बताओ क्या तकलीफ है। तो वो एकदम हाई फॉर्म है, देह अहंकार जिसमें है, मेरे पास ये बहुत है, महल माड़िया है, पैसे है, मेरे पास सम्मान इतना प्राप्त है, ये सारी जो भाषा है ये देह अहंकार की भाषा है। जैसे दुर्योधन, अहंकार है वो जिसमें। दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान विशेषताओं का, मैं बोलता अच्छा हूं, मैं मुरली अच्छी सुनाती हूं, तुमको आना चाहिए क्लास में, आते क्यों नहीं? मेरे हाथ का भोजन खाया नहीं ना, आज खा के जाओ, हमेशा याद रखोगे। ऐसा भोजन तो आज तक कभी खाया नहीं होगा तुमने। मेरी हैंडलिंग पावर पूछ लो स्टूडेंट से, मैं नहीं बताऊंगी, स्टूडेंट से पूछो। मेरी पालना एकदम मम्मा की तरह, साक्षात मम्मा देखना हो तो। अपनी विशेषताओं का अहंकार, घमंड की मंडी लिए घूमते हैं। तीसरा है देहभान, स्त्री और पुरुष ये सूक्ष्म है, ये एक भाग है उसमें का, मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से भी ऊपर निकल जाना, वो स्त्री वाले संस्कार नहीं रहे। बाबा ने दादियों को कहा था तुम स्त्रिया हो ये भूल जाओ, समान है तुम्हारा, मैं नारायण हूं, लक्ष्मी नारायण, विष्णु, ये समान ले लो, नहीं तो स्त्रियों वाले संस्कार रहेंगे, डर, लज्जा, ईर्ष्या, वो सब नहीं होने चाहिए। स्त्रैण संस्कारों से परे और पुरुषत्व के संस्कारों से भी परे। आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है, जेंडरलेस, उसमें दोनों प्रकार के संस्कार है। लास्ट संडे की के लास्ट संडे की मुरली चार कंबाइंड स्वरूप में चौथा, आत्मा में लक्ष्मी के भी और नारायण के भी संस्कार है, चतुर्भुज। तो देहभान की डाली और देहभान के रूप, इच्छा करना, ये मुझे अच्छा लगता है, और क्या क्या है, थोड़ा घूम के आ जाऊं, घूमना अच्छा लगता है, हाँ ये भी देहभान है। और टॉन्ट, और टॉन्टिंग भी देहभान है, कमेंट्स करना, टॉन्ट करना, किसी को दुखाना, जोर जोर से हा 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 हंसना, और अपनी जिद और सिद्ध करना, और अपनी हार, अपनी पराजय, अपनी गलती को स्वीकार ना करना, मैं राइट हूं, पहले मानो कि तुम रॉन्ग हो तो उसके बाद ही बात करेंगे, तब तक बात नहीं करेंगे, जाओ यहां से। जब ये मानोगे कि तुम गलत हो उसके बाद ही आगे की चर्चा होगी, तब तक कोई बात नहीं। और हमारी बात नहीं मानी ना, अब जाओ तुम लोग करो सेवा, हम नहीं करेंगे, हम तो जा रहे, देखते कैसे करते सेवा, हमारी जो आइडिया है, हमारी जो प्लानिंग है उसको नहीं माना ना, करो अब जाओ। ये सब क्या है? देवगान देह अभिमान। एक बार ओम शांति भवन में कोई मीडिया वाले आए थे और एक मीडिया वाले आ गए स्टेज पर गया और उसने इतनी ग्लानी की ब्रह्मा कुमारीज की बहुत, तो वो बोले जा रहा था सारी सभा, तो जगदीश भाई भी बैठे थे, तो जैसे उतरा तो जगदीश भाई ने उसको एकदम पूरा हक किया बड़े प्यार से बहुत बढ़िया करके, कुछ नहीं कहा, कहा कुछ नहीं, बस इतना ही फील होना, बैड लगना, कोई स्तुति करे तो आहा, ऐसा लगे कि रिकॉर्ड करके सुनते रहो अतीन्द्रिय सुख, और निंदा करे तो एकदम ही मूड ऑफ, एक बार क्या निंदा कर दी 10 दिन तक एकदम उदास, भोजन को देखते ही आज भूख ही नहीं है। हम इतनी सेवा करते हमको ऐसा ऐसा कहते, हम इतने अच्छे हैं हमारे बारे में ये बोलते हैं, हम किसी की तारीफ ग्लानी नहीं करते, ये हमारी ग्लानी करते, बुरा लगता है। फिर रोना छुप छुप के कमरा बंद करके, ये भी क्या है देवान, किसी से आकर्षण, किसी से लगाव, किसी से प्यार, ये अच्छा लगता है, इसकी ये बात अच्छी लगती है देवभान, ये सारे के सारे देवभान के, और निर्विकारी बनने में यही एक बाधा है। सब मुरलियों में रोज आता है देवभान देवभान छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर ये देवभान है क्या, ये देवभान रहता कहाँ है, उसके क्या स्वरूप है, और वो मुझ में है क्या, इसकी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, पहले डायग्नोसिस निदान और फिर उपचार। अगर कोई मरीज कहे कि नहीं नहीं ये बीमारी मुझे है ही नहीं, तो उपचार होगा क्या, पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ईर्ष्या है, किसी को आगे बढ़ते हुए देख इधर कलेजे में एक बड़ा ही दर्द होता है, अगर उसकी कोई आके तारीफ कर दे तो सीना फटने लगता है, मतलब ईर्ष्या है, और यदि किसी से लगाव है और वो किसी और के साथ जा रहा है तो भी दर्द दर्द होता है, बड़ा ही दर्द मीठा मीठा, ये सब देवभान के रूप है। तो टीचर्स को बाबा क्या कह रहे हैं, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार रहन सहन मेरी आदत ये सब भी देवभान है, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्म कर दिया परंतु वो कर्म हमें छुए ना स्पर्श ना करे, अस्पर्शित अनटच्ड, कर्म और कर्म का परिणाम दोनों भी टच ना करे, ऐसी कर्मों से भी डिटैचमेंट, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है सेवाओं से, मेरी सेवा मेरा सेंटर मेरी एरिया, ये सब भी देवभान के रूप है, मेरा डिपार्टमेंट, ये बात मुझसे पूछ के क्यों नहीं की, किससे पूछ के की तुमने, पहले ही बोला था मत करना, कर्म ही ऐसे किए थे ऐसा ही होना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा किया ना, अब उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये सब देवभानी है। तो इस डाली से भी परे देहभान की जो आदतें बनी है, जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है, इफ यू वॉन्ट टू डिफीट अ हैबिट क्रिएट अ काउंटर हैबिट. यदि एक आदत को खत्म करना है तो दूसरी विपक्ष विरोधी आदत को निर्माण करो. एक आदत है, किसी को आदत है टॉन्ट करने की, दूसरी आदत निर्माण करो स्तुति करने की. विरोधी आदत प्यूरिटी की हैबिट्स निर्माण करो तो अपवित्रता स्वतः चली जाएगी. वैराग की आदतें निर्माण करो तो राग आसक्ति मोह लगाव की आदतें चली जाएगी. संसार से वैराग की आदतें, संसार के दोष देख लेना, यहां के दुख देख लेना, कैसे आत्माएं दुखी है उनके दुखों को देख लेना और स्वयं को विलग अलग कर देना. ये आदतें, नई आदतें निर्माण करनी है. पुरानी देहभान की, विकार की, पाप की, कुकर्म की, विकर्म की आदतों को मिटाने के लिए. तो टीचर अर्थात तीन बातें. पहला, बेहद के सेवादारी. टीचर अर्थात किसी भी डाली में फंसने वाले नहीं. और टीचर अर्थात कर्मातीत, कर्म के बंधन से परे. ये फर्स्ट पैराग्राफ है. दूसरे में क्या कहा टीचर्स के लिए. नंबर वन, वन अर्थात विन करने वाले. उसमें भी पहला जो परिच्छेद है उसी का विस्तार है. यहां पर बाबा ने एक उदाहरण दिया है, जैसे शरीर की बीमारी होती है, देह की व्याधि होती है तो दर्द खींचता है, शरीर खींचता है. उसी तरह जैसे ये कर्मभोग है और तुम कहते हो कि कर्मभोग कड़ा है, उसी तरह पुरानी आदत पुराने संस्कार भी क्या है, कर्मभोग है. ये कितनी नई बात है. अभी तक क्या सुना हमने, कर्मभोग अर्थात शरीर की पीड़ा, शरीर की व्याधि, शरीर को होने वाली. कुछ दिन पहले वरदान भी था, कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर दो. पर ये जो संस्कार बने हुए, हैबिट्स बनी हुई है, ये भी कर्म भोग है. एकदम नई बात बाबा ने बताई है कि हमारी देहभान की आदतें जो है वो भी पीड़ा देती है. सफरिंग्स ऑफ कर्मा, कर्म भोग है वो, उससे भी परे. जो हर बात में विन करे वो नंबर वन. तो टीचर अर्थात वन. दूसरी बात कही यहां टीचर के लिए, टीचर अर्थात फ्रेंड्स. कौन से फ्रेंड्स? गॉडली फ्रेंड्स. और तीसरी बात टीचर अर्थात आशिक. किसके? उस माशुक के. तो भगवान से दोस्ती, भगवान से मैत्री, भगवान से फ्रेंडशिप, उसको फ्रेंड की तरह यूज करना है जीवन में. फ्रेंड के साथ क्या की जाती है, कौन सी बात की जाती है जो हम किसी के साथ नहीं करते? शेयरिंग करते हैं. जो बातें हम माँ बाप को नहीं बता सकते वो फ्रेंड्स को बताते हैं. किसी को नहीं बताएंगे वो फ्रेंड को बताएंगे. फ्रेंड के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, घर पे कम. क्या हमने भगवान को अपना दोस्त बनाया है, जिसको सब कुछ बताया जाए, जिसके साथ हम पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी न छिपा हो उससे. वो माँ बाप से भले छिपाते हैं, दूसरों से छिपाते, पर दोस्त को सब बता देते हैं. तो एक तो व्यक्ति ऐसा हो संसार में कि जिसको हम अपने बारे में सब कुछ बता दें, सब कुछ, गहरे से गहरी बातें, गहरे से गहरी भूल. और देहधारी यदि कोई नहीं, क्योंकि देहधारियों का भरोसा भी नहीं, हमने किसी को बता दिया और वो उसका फायदा उठाया आगे जाके. परमात्मा एकमात्र ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी हस्ती है कि जिसको हम जो बात बताएंगे वो कभी लीक नहीं करेगा, उसको हम बता सकते हैं। तो अमृत वेला जीवन की ऐसी कुछ बातें जो आज तक हमने किसी को नहीं बताई, ऐसी कम से कम 3 या 5 बातें उसको सुननी कल अमृत वेला कि ये है वो। कितनी घृणास्पद बातें हो, कई लोग लिखते हैं हमें ऐसा ऐसी हमने गलती की है जीवन में, हम बताने में भी शर्म आती है। अभी अभी किसी ने बहुत लंबा मैसेज भेजा है, कुमार हूं, ऐसी गलती की है कि बता नहीं सकता। कुमारी हूं परंतु ऐसा कुछ हुआ है कि बता नहीं सकती। अब क्या करें, एक कन्या मिले थे, कुछ मिली थी, ज्ञान में आने से पहले किसी एक कुमार से लगाव था, फिर शादी हो गई और उसके बाद में पति वो और वो कुमार तीनों ही ज्ञान में आ गए। अभी पति है एकदम पक्का और वो जो पहला वाला कुमार था वो भी है, पर पति होते हुए भी उसके ऊपर उसकी तरफ आकर्षण जाता है और वो जो है वो मुरली भी सुनाता है, पर वो कह रहे थे इतनी आत्मग्लानी है, इतनी आत्मग्लानी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या करूं। अब तो पति है, शादी हो गई है, उससे क्या लेना देना, पर वो खुद खींचता है। अगर वो किसी और से बात करे तो आग लग जाती है, उसके शब्द है। पता सब है, मुरली रोज सुनते हैं, क्लासेस बहुत सुनी है पवित्रता की, एक एक क्लास 3-3, 4-4 बार सुनी है ब्रह्मचर्य की क्लासेस, पर वो क्लास अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें देखी है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी और से अटैच हो जाता है, तर्क के आधार से अटैच नहीं होता है, कोई लॉजिक के आधार से अटैच होता है क्या कि उससे अटैचमेंट हो तो ये फायदे हैं। इमोशंस काम करते हैं वहां, और ज्ञान में इमोशंस नहीं है, ज्ञान में लॉजिक है, सुनना पड़ता है लोग क्या कहेंगे, मुरली में नहीं दिखे तो उसमें बुद्धि है, इसलिए वो इतना गहराई में नहीं गया है, पर वो जो व्यक्ति से अटैचमेंट है वो उसमें फीलिंग्स इमोशंस जज्बात वो इतने गहरे चले जाते हैं कि वहां पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है। सारे दिन भर समझाते रहता है व्यक्ति अपने आप को, ज्ञान ये कहता है, पवित्रता ये कहती है, परंतु रात और सारे इमोशंस और फिर वही इतना जबरदस्त प्रभाव है। इसके लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए ज्ञान के साथ, इस ज्ञान में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो यहां पर बाबा ने कही है, वो क्या है, तुम्हारा माशुक और तुम क्या हो, आशिक। जैसे वहां शादी होती है तो क्या करते हैं, उसके कदम पर कदम रखते हैं, सप्तपति पता है क्या होती है, 7 फेरे शादी के घूमते हैं गोल गोल, सप्तपदी कहते हैं उसको, 7 फेरे। तो तुमको भी क्या करने है रूहानी माशुक के साथ इस ज्ञान को बुद्धि से भी ज्यादा विजुलाइज करने से ज्यादा समझ में आता है, देखना, उसको चित्र बना देना क्योंकि चित्रों की भाषा वह समझता है. सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं समझता है, चित्रों की भाषा समझता है. सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक की भाषा नहीं समझता है, इमोशंस की भाषा समझता है. सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता है, उसको जो दिया जाए वो स्वीकार कर लेता है. उसको चित्र दिखाओ, उसको साउंड 3D ज्यादा समझ में आता है. उसको मूवीज देखो तो ज्यादा समझ में आता है, किताब पढ़ो तो नींद आती है. और चित्र ना हो तो ये देखो, ये कैसे याद रखेगा, तो देखते ही नींद चालू हो जाती है इसको. और इसी की जगह कोई कार्टून शो हो, कोई कॉमेडी हो, तो कैसे एक घंटा चला जाए पता भी नहीं चलता. पता है 10 बजे सोना है, पर सीरियल इतना इंटरेस्टिंग है और मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है कि क्या करूं, कब 10 के 10:30 और 10:45 हो गए पता ही नहीं. क्योंकि वैसा करने के बाद अमृत वेला तो उठे और अच्छा हुआ, तो हिम्मत और बढ़ गई कि ये करने के बाद भी वो अच्छा होता है. कि इतने हम पावरफुल योगी है तो फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदर गया क्या वो देखकर. सात फेरे, उसके सात अर्थ है. सबसे पहला फेरा जो होता है भोजन के लिए होता है, कि हमको अच्छा भोजन मिले दोनों को. फॉर फूड. दूसरा फेरा जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है, कि हम दोनों स्वस्थ रहे. तीसरा फेरा जो होता है धन, कि अभी हम शादी कर रहे हैं तो शादी के बाद धन धान्य भरपूर हो. चौथा फेरा होता है सम्मान और प्रेम, हमारे आपस में प्रेम बरकरार रहे और हम एक दूसरे का सम्मान करें. पांचवा फेरा होता है बच्चे, अच्छे गुणवान बच्चे मिले, खुराफाती नहीं, उधम मचाने वाले नहीं, अच्छे सुशील समझदार आज्ञाकारी बच्चे मिले. अगला है दीर्घायु, हमारी दीर्घायु. और सातवां है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरों को हम समझे दोनों, लॉयल्टी हो, वफादार एक दूसरे के प्रति, टुगेदरनेस. ये सात फेरों के सप्तपदी जिसको कहते हैं. और वो घूमते समय भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो अलग अलग है और ढेर सारी है, तुम मेरे मैं तुम्हारी वगैरह वगैरह वगैरह. जैसे वो विवाह है, और बाबा ने कहा कि तुम माशुक के कदम पर कदम रखो, अर्थात बुद्धि रूपी कदम. वो तो स्थूल करते हैं, एक मानसिक विवाह रचना है अमृत वेला, कि आत्मा का विवाह शिव से हो रहा है. और उसमें प्रतिज्ञा करनी है, सात फेरे भी लेना है, ज्योति बिंदु आगे और हम पीछे, पंडित बिठा देना किसी को, ब्रह्मा बाबा ये ठीक है. कि अब मैं आत्मा उस शिव साजन की हो गई, अब मेरे सारे संबंध उससे, अब मुझे कोई देहधारी पति नहीं चाहिए, अब कोई देहधारी मुझे खींच नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता. ये सबकॉन्शियस माइंड को ये भाषा समझ में आती है, पिक्चर्स की. सुनना भी आवाजें, किसकी आवाजें सुनोगे, बाबा की नहीं. शादी में कौन सी आवाजें होती है, शहनाई. आवाजें भी सुन लेना, और मेरा विवाह हो रहा है. अपने दोस्तों को निमंत्रण पत्र भी देना, हमारे मेरे विवाह में आना, बच्चे लिखते ना नीचे, जरूर आना. तो अलौकिक विवाह, स्पिरिचुअल मैरिज, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये मन के ईश्वर के साथ जो बंधन है, जो बॉन्ड है, उसको प्रगाढ़ करेगा. कि मैं आत्मा आज बंध गई हूं उसके साथ, अब कोई देहधारी अर्थात परपुरुष, भारतीय नारी की दृष्टि परपुरुष की तरफ जाती है तो क्या कहा जाता है उसको? बेवफा कुल, ये बहुत छोटा है बेवफा, कुल कलंकित। स्वप्न में भी परपुरुष नहीं, इसलिए पवित्रता नारी में इतना, इतनी बल होता है, इतना पावर होता है। सीता क्या प्रतिज्ञा करती है वो लास्ट में, उसमें समाने से पहले, हे धरती माता, यदि मैंने स्वप्न में भी राम के अतिरिक्त किसी को चाहा हो, देखा हो, अगर नहीं देखा होगा तो तुम मुझे अपने अंदर समा लो। तो धरती और वो अंदर पवित्रता की शक्ति, इसके लिए उन स्त्रियों का भी बहुत गायन है जो एक पतिव्रता, एक होता है पतिव्रता, एक होता है सतीव्रता। सतीव्रता पुरुष को के लिए कहा जाता है, पवित्र पतिव्रता स्त्रियों के लिए। सतीव्रता अर्थात एक की प्रति, पतिव्रता अर्थात एक के प्रति, दोनों तरफ से। तो मानसिक विवाह, तो वो कौन है माशुक और मैं आत्मा कौन हूं आशिक, मेरा काम क्या है, उसके कदम पर कदम रखा। दूसरा बताया फ्रेंड, वो क्या है दोस्त। तो दोस्ती में क्या होती है, समानता होती है, शेयरिंग होती है। तो जैसा वो है वैसे मैं। बाबा ने मुरली कहां से चालू की, बाप आए हैं आवाज से पहरे परे रहने वाला बाप तुमको क्या करने आया है, आवाज से परे ले जाने वाला, इस आवाज की दुनिया में आए, अव्यक्त धाम में रहने वाला, अव्यक्त बनाने आया है, व्यक्त शरीर में, व्यक्त दुनिया में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा मुझसे प्यार है, और जिसका जिससे प्यार है उसको उसके साथ रहना चाहिए। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों, मैं हूं अव्यक्त तुम व्यक्त क्यों, मैं आवाज से परे तुम आवाज में क्यों, मैं निराकार तुम साकार क्यों। तो जैसे वो वैसे मैं, बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट, बाइबल में लिखा है, वैसे ही परफेक्ट बन जाओ जैसा तुम्हारा पिता परफेक्ट है। God is spirit. God is spirit. And he who shall love him in spirit. वो निराकार एक आत्मा है, और जिसको उसको याद करना है उसे भी आत्मा समझना होगा। तो ये तीन बातें हैं यहां पर। सबसे पहले बताई नंबर वन अर्थात विन होना, हर चीज में विन करना, अर्थात कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसना। जैसे वो व्याधि है शरीर की और वो कर्म बंधन है, उसी तरह ये जो संस्कार है, ये आदतें है, ये पैटर्न जो क्रिएट किया है सबकॉन्शियस माइंड में, न्यूरल नेटवर्क जो क्रिएट किया है अंदर ब्रेन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको चेंज करना है। जैसे वो आदतें निर्माण की, अब नई आदतें निर्माण करो। वैसी व्यर्थ चर्चा की आदत निर्माण की, अभी ज्ञान चर्चा की आदत निर्माण करो। वह बोलने की आदत निर्माण की, अभी ज्ञान सुनाने की आदत निर्माण करो। मम्मा ने एक जगह कहा है, ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का भी ज्ञान, क्या ज्ञान सुनाना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ये जो ज्ञान है उसका भी ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और याद की याद, याद करना है वो भी तो याद चाहिए। तो ये सबसे पहली बात, दूसरा फ्रेंड, तीसरा बताया साजन। तो ये सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, अलौकिक जॉब। क्या कहा टीचर्स को, जो भी काम करते हो ये मत समझो कि ये साधारण काम है, लौकिक जॉब है। उदाहरण दिया, जैसे कुछ माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या रहता है बुद्धि में, बच्चों के लिए कर रहे हैं। वैसे ही तुमको क्या रहे, अपने लिए थोड़ी कर रहे हो, बाप के लिए कर रहे हो, सेवा अर्थ कर रहे हो। तो जो भी कुछ करो उसको अलौकिक बना देना, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द मटीरियल वर्क, स्पिरिचुअलाइज कर देना। ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है कोई ये ना सोचे कि यह लौकिक कार्य है, हर कार्य अलौकिक है, हर अलौकिक, हर लौकिक के पीछे अलौकिक छिपा हुआ है। कोई ऑफिस में ड्यूटी करता है, क्लर्क है, तो ये ना समझे कि ये अलौकिक कार्य है, हर चीज को अलौकिक ही समझना है। तो टीचर अर्थात अलौकिक जॉब करने वाले, हर कार्य को क्या समझना, अलौकिक है। और वो घर के छोटे छोटे जितने कार्य है सबको क्या समझना, अलौकिक है। गार्डनिंग, पानी दे रहे, अलौकिक कार्य। भोजन बना रहे, अलौकिक कार्य है। हर कार्य अलौकिक है, क्योंकि हर हमारा हर कार्य उसको प्रत्यक्ष करने वाले, चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। यहां आने वाले कितने सारे बाहर के लोग, मीटिंग्स और ये और वो, जरूरी नहीं है कि वो यहां की लेक्चर्स और क्लासेस से कोई प्रभावित होगा, 10%, 90% जो प्रभावित हो रहे हैं वातावरण, वायुमंडल, स्वच्छता, प्यूरिटी, धारणाएं, बोलने का ढंग, मिठास, उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे। केवल कोई एक अपने डिपार्टमेंट का ही काम बहुत अच्छे से करे, वो सारे विश्व को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये स्टेज है जहां हम खड़े हैं। तो टीचर अर्थात तीसरी बात, अलौकिक जॉब करने वाली। फोर्थ पॉइंट, चौथा पैराग्राफ, टीचर अर्थात डबल सरेंडर, तन मन धन बाप का। सरेंडर की सूक्ष्म परिभाषा दी है, सब कुछ बापा के अर्थ, बाबा के प्रति, जो कुछ है उसके लिए, तन भी मन भी धन भी। जो फर्स्ट पार्ट है मुरली का, उसमें तन के लिए कहा, यह तुमको लोन मिला है, अवतार अर्थात शरीर लोन मिला है। अवतार अर्थात अमानत में ख्यानत ना करने वाले। इस शरीर के केवल दो ही काम है, एक सेवा और दूसरा तपस्या, बस। ये ना तो अपने भोग के लिए, ना ही किसी और व्यक्ति के। इसके लिए इस शरीर का भी बहुत महत्व है, पर इसमें फंसना भी नहीं है, दोनों चीजें। तो टीचर अर्थात डबल सरेंडर, बाबा ने कहा, सब कुछ उसका। कभी इसी क्लास में चर्चा की थी या कहीं और क्लास में, सात प्रकार के सरेंडर है, एक है तन का, एक है मन का, एक है धन का, एक है बुद्धि का, संस्कार का, कर्म का, कर्म के परिणाम का। ये सातों ही स्वाहा यज्ञ की वेदिका पर अर्पित। ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, संस्कार भी तेरा, कर्म भी तेरे, और उसके जो परिणाम है वो भी तेरा। अब तू जाने, इतनी सूक्ष्म सरेंडर की परिभाषा है। कभी बाबा ने कहा है, जैसे देवताओं को भोग लगाया जाता है, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग शुद्ध वस्तुओं का लगा जाता है, तुम एक एक संकल्प का भोग भगवान को लगाओ। एक एक संकल्प कितना प्योर, कितना शुद्ध, कितना परिष्कृत, कितना सैंक्टिफाइड होना चाहिए। अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध विचार आ रहे, भगवान स्वीकार नहीं करेगा उसको। किसी के प्रति हमारे मन में घृणा है, सूक्ष्म घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम सोचते हैं कि वो आगे ना बढ़े, हम सोचते हैं किसी के प्रति निगेटिविटी है, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। कल परसों वरदान था ना, कि क्या सोचते हैं, ये ऐसा क्यों बोलता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये बातें ऐसी क्यों है, ये रहेगा तो प्रसन्नता नहीं होगी। इन प्रश्नों से पार। यदि कोई बच्चा रोज बाबा के सामने जाता है और रोज कंप्लेन करता है, तो क्या भगवान को पसंद आएगा वो? शायद नहीं। इसलिए स्वाहा। पांचवी बात, टीचर्स की बाबा ने एक विशेषता बताई, कि जो भी कहा जाता है उनको प्रयत्न करते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये पांचवा पैराग्राफ है। जो भी कहा जाता है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, ये तुम में विशेषता। ये डबल विदेशियों की बात कर रहे हैं बाबा। छठवा, वारिस क्वालिटी। टीचर अर्थात दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है बुलंद आवाज करने वाले, दूसरे है वारिस क्वालिटी। एक है सहयोगी, एक है वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी अर्थात सरेंडर। वारिस क्वालिटी अर्थात जिस समय जो श्रीमत मिले उसका तुरंत फॉलो करने वाले। तो ऐसी ये छह बातें हैं। एक बात रह गई है पर वो बड़ा पॉइंट है, उसको कर लेंगे सुबह। तो ये बातें तो वैसे टीचर से कहे, पर हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि बाबा जो भी बातें करते हैं, जिस भी ग्रुप से कहते हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। और वैसे हम एक एक टीचर ही हैं यहां पर। संसार में तो श्रोता है, सुनने वाले है खाली। एक व्यक्ति प्रवचन करता है, बाकी सब सुनते हैं। यहां तो अभी अभी कोर्स हुआ नहीं क्या, चालू सुनाने ज्ञान ऐसा कोई है उसके, पता नहीं उसके अंदर क्या हलचल हो जाती है। कोर्स हुआ नहीं और लग जाते ज्ञान सुनाने, ऐसी पावर आ जाती है अजीबो गरीब कि पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाते हैं। ये ज्ञान ही ऐसा है नशे वाला, अजीब सी पावर आ जाती है। इसके लिए लास्ट संडे कहा था ना, जिसका 7 दिन का कोर्स हुआ है उसको भी बाप क्या कहते हैं, महारथी महान। अभी अभी कोर्स हुआ और चले कोर्स कराने, अभी आधा ही कोर्स हुआ, पूरा भी नहीं हुआ तो चले परिचय देने आत्मा परमात्मा का। हाँ, तो ये ऐसा है। एक जगह जगदीश भाई ने लिखा है, कहा है कि पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को इतना खिला दो, इतना पकड़ के सुना दो ज्ञान कि जैसे किसी के दो हाथी के सिर हो तब भी समझ में ना आए, इतना सुना देते हो उसको, इतना उसको पूरा भर देते हैं। 7 दिन का प्रदर्शनी एक ही घंटे में ऐसा समझा देंगे कि बस ऐसा सुनाएंगे पकड़ के कि बस बस पूरा उसमें पंप, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेरहमी से रहम करते हैं बड़ा। वो कहता है मैं अभी अभी उधर ओम शांति भवन से सब कुछ समझा के आया हूं, वो समझा अब मैं समझाऊंगा, अब मैं बताऊंगा आत्मा क्या है और परमात्मा, वो सब भूलो उधर का, मैं बताता हूं तुमको। दिखती नहीं तो ऐसा भी ना हो, परख के। और दूसरी बात, केवल ज्ञान समझाने से ही समझते नहीं है, हम भी तो कुछ है, हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है। जरूरी थोड़ी ना पकड़ के ज्ञान ही सुनाना है। ऐसे कितने अच्छे अच्छे भाई है, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते, खाली उनकी सेवा करते। उनको कुछ चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कुछ टिफिन चाहिए, टोली चाहिए, उतना दे देते। वो तो ज्ञान भूल जाते हैं आने वाले, ये याद रहता है उनको। वो स्टेज पे जितने लोगों ने भाषण सुना है, बड़े बड़े भाषण ठोके, वो कोई भी याद नहीं है। याद है तो किचन का वो भाई, याद है तो जिसने जाते समय वो यात्रा भोजन देके गया था, वो याद है उसको। बाकी तो वो सब भूल गया, भाषण में कौन सी बड़ी बड़ी हाई फाई चीजें, साइंटिफिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहां गया पता ही नहीं। याद तो कुछ और ही है। वो एक कलेक्टर साहब आए थे शांतिवन में, तो मनमोहिनी से उधर जाने के लिए उनको कुछ सामान नहीं था, तो एक भाई है अपने अपनी साइकिल के डंडे के बीच में उसको बिठाया कलेक्टर साहब को और लेके गया। और कलेक्टर भी इतने खुश हो गए, उसकी तो यादगार बन गई वो। अब उसका क्या लेवल, कलेक्टर मतलब बाप रे कितना बड़ी पोस्ट है। तो ये तो भाई तो इतना उसने अधिकार से उसको बिठाया, बैठो चलो मैं ले चलता हूं। ऐसा भी नहीं कि इतने बड़े हैं तो इसको तो इसके आगे झुके, ये सब ऐसा कुछ नहीं, बैठो आराम से लेके गया। तो वो याद रहेगा उसको, शायद ही कोई भाषण याद होगा होगा उसको तो। और सेवा तो सेवा, ये थोड़ी ना दिखेगा कोई किसने भाषण दिया किसने क्या किया, सेवा हुई बस। तो सेवा की इतनी सूक्ष्म परिभाषा नहीं है, बाबा की सेवा की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, अनुभूति। एक जगह टीचर्स के लिए कहा, जो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की और न्यारे प्यारे शिव बाबा की अनुभूति कराए, यह है टीचर। यह टीचर की परिभाषा है, इसी में एक जगह कहा है। तो आत्माओं को अनुभव हो जाए बस, और जरूरी नहीं कि हम उनसे मिले भी। वो चलो यहां पर ज्ञान सरोवर में जैसे कोई रिट्रीट या कोई लोग आए हैं, कोई विंग की कॉन्फ्रेंस है, मीडिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कहीं गए नहीं, हम अपने डिपार्टमेंट में बिजी, पर अमृत वेला हम उन सबको देख ले, एक एक आत्मा हमारी आंखों के सामने आ जाए, और संकल्प देना उनको कि हे देव कुल की आत्मा हो, जाग जाओ, तुम जहां आए हो ये परमात्मा अवतरण भूमि है, आत्मा जग जाए, यही दिवाली है। बाहर तो दिए जलाने से अंदर के दिए नहीं जलते हैं, यहां ज्योत जग जाए, उनकी ज्योत जगानी है, तो ऐसे उनको सकाश देना, उनसे जुड़ जाना है आत्माओं से, और उनको परमात्मा से जुड़ा देना है, ये वास्तविक सेवा है। तो सबसे छह बातें बताई, सबसे पहला बताया टीचर अर्थात देहत के सेवादारी, स्थान अगर बदली हुआ तो कोई डिस्टर्ब नहीं। दूसरा बताया उसी में टीचर अर्थात, टीचर अर्थात किसी भी डाली में फंसने वाले नहीं, और टीचर अर्थात कर्मातीत, ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड टीचर अर्थात नंबर वन, जैसे वो व्याधि है वैसे ये भी व्याधि है, कर्म भोग है, मेरा ये मेरा वो, अपने हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, आत्म हनन करने वाली मेरी कौन सी आदतें हैं, सर्वनाश करने वाली मैंने कौन सी आदतें बना रखी है, टीवी मोबाइल इंटरनेट यूट्यूब व्हाट्सएप, क्या ऐसी कोई आदत है जो मेरा सीधा आत्मनाश कर दे। आत्मा आग से जलती नहीं है, पर विकार आग को जल, आत्मा को जलाते हैं। तो नंबर वन आत्मा टीचर अर्थात, टीचर अर्थात दूसरे में क्या बताया, फ्रेंड, भगवान को फ्रेंड, रूहानी फ्रेंडशिप, डिवाइन फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड, उसको अपना फ्रेंड बना देना और कहना कि चलो मेरे साथ। तीसरा माशुक, बिलवेट, वो एक पत्र आता है तो कितना वो बाथरूम में जा जाके अंधेरे में कोई देखे ना पत्र पढ़ते, प्रेम पत्र, ये पर प्रभु पाती है मुरली। फिर बताया टीचर अर्थात अलौकिक जॉब करने वाली, जो भी कार्य करो क्या समझो, अलौकिक है ये महान कार्य है, ये छोटा नहीं है, झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाना महान कार्य है या हजार के सामने भाषण देना महान कार्य है, क्या है उत्तर? क्यों झाड़ू लगाते हो गए तो अहंकार आ गया तो कार्य की महानता उस पर निर्भर ही नहीं है, क्या है वो? कार्य की महानता निर्भर है भाव पर, स्थिति पर। पर अगर कोई इस भाव से करता है कि दूसरे देखे और समझे, देखो मैं भी कितना निरंकारी हूं, अपनी निरंकारिता का प्रदर्शन, यह भी अहंकार है, यह भी अहंकार है, निरंकारिता का अहंकार कि मैं कितना निरंकार होते, लोग मुझसे सीखे और कोई दूसरा आकर मुझसे कहते हैं तुम्हारे से ज्यादा निरंकारी वो है तो जलन होती है, मेरे से ज्यादा निरंकारी, सबसे ज्यादा निरंकारी तो मैं हूं, मुझसे भी ज्यादा हम्बल कोई, किसकी मजाल जो मेरे से ज्यादा हम्बल है, ये भी अहंकार है, क्योंकि व्यक्ति निरंकारी भी होता है तो दिखावे के लिए होता है कभी कभी, हम तो आपके चरणों की धूल है, दिखावे के लिए, बोलने के लिए, हमारा स्थान तो आपके चरणों में है, कोई अगर आके कहे और हमको यहां बैठो चरणों में तो कितना बुरा लगेगा उसको वो तो इसलिए बोलते हैं कि हम कह रहे नहीं नहीं इधर बैठो, जानबूझ के नीचे बैठेंगे फिर कहेंगे इधर बैठो, वो सब ढोंगे, ऐसा निरंकारिता नहीं होती, कोई देखे, जैसे मंदिर का पुजारी होता है रोज आरती करता है फटाफट फटाफट आरती करता है, पर जिस दिन जश्न होता है फेस्टिवल होता है एकदम धीरे 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 आरती करता है, एक एक चीज ध्यान से रखता है, इतनी अतीव परमात्मा प्रेम कहां से जाग होगा, जाग उठा, रोज तो फटाफट करते थे अपनी, तब कोई देखने वाला नहीं था, जिस दिन हजारों लोग देखने वाले हैं उस दिन पता नहीं उसको आंखों से आंसू आते हैं, कभी भाव समाधि में गिर जाता है नीचे, एकदम उन्माद प्रभु प्रेम का, बाकी दिन नहीं होता है कुछ, उसमें भी दिखावा होता है, तो अलौकिक जॉब. नेक्स्ट बताया पांचवा, एक विशेषता. कौन सी विशेषता? जो कहा वो तुरंत कर दिया, जो भी भगवान कहे, जैसे जो मुरली में आता है पॉइंट वो तुरंत कर देना, ये काम तुरंत, तभी के तभी संकल्प कर लेना मुरली सुनते सुनते, ये काम मैंने आज तक नहीं किया, ये मुझे करना है. ये एकदम नई बात है. ज्ञान की कस्तूरी खुशबूदार फैलाओ, आज कहा ज्ञान संजीवनी बूटी. कुछ कुछ मूर्छित हो गए, गिर गए अच्छे अच्छे फूल, मुरझा गए, उनको सुरजित करो, ज्ञान संजीवनी है. आज कहा ना ज्ञान की दो से तुलना की है. अच्छी रिफाइंड बुद्धि होनी चाहिए तुमको ये ज्ञान समझने के लिए. क्या मेरी रिफाइंड अच्छी बुद्धि बनी है कि ज्ञान को पढ़ो और समझ में आ जाए इसके बातें, ये अर्थ, इसके गहन अर्थ. सिक्स्थ पॉइंट, डबल सरेंडर, तन मन धन सब कुछ उसको. लास्ट पॉइंट बताया वारिस क्वालिटी निकालो. बाबा ने कहा सहयोगी बहुत निकाल लिया, अभी वारिस निकालो. एक वारिस बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, तो ऐसी वारिस क्वालिटी निकालो. कहा ना राष्ट्रपति भी आ गया और लंदन से भी आ गए, पहले नहीं आते थे, वो सारी बातें इसमें है. तो सेवा हम जो करें केवल इसके लिए नहीं कि वो उनके इतने स्टूडेंट है हमारे इतने स्टूडेंट हो, ऐसा कोई नहीं है. जिस स्टेट सेंटर पे 50 स्टूडेंट है वो सेंटर ज्यादा पावरफुल है, और एक सेंटर है जिसमें 1000 स्टूडेंट है, इसका मतलब नहीं 1000 स्टूडेंट है तो वो ज्यादा पावरफुल है. क्वालिटी क्या है वहां की आत्माओं की, ऐसे नहीं चाहिए. एक सेवाधारी भाई सेंटर मधुबन में आया था सेवा करने के लिए, पर कहता था ये बीड़ी छूटती नहीं, अब क्या करो. अब ऐसे नहीं आया सेवाधारी, आदत ही ऐसी है, ऐसी क्वालिटी नहीं पक्की. धक से छोड़ दे सारा संसार, संसार के भोग विलास विकारी आदतें, ये तो ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है. दोनों साथ साथ नहीं चल सकते ज्ञान और विकार. तो वारिस क्वालिटी तो ऐसी. टीचर्स से बाबा ने ये कुछ बातें कही. ओम शांति.